तृतीय अंक नवम दृश्य। स्थान महाराज बिंबिसार का कुटीर। बिंबिसार लेटे हुए हैं, नेपथ्य से गान चल रहा है। चल बसंत बाला अंचल से किस घातक सौरभ से मस्त, आती मलयानिल की लहरें जब दिनकर होता अस्त। मधुकर से कर संधि विचर कर ऊषा नदी के तट उस पार, चूसा रस पत्तों पत्तों से फूलों का दे लोभ अपार। लगे रहे जो अभी डाल से बने आवरण फूलों के, अवयव थे श्रृंगार रहे तो बनमाला के झूलों के। आशा देकर गले लगाया रुके न वे फिर रोके से, उन्हें हिलाया बहकाया भी किधर उठाया झोंके से। कुमलाए सूखे ऐठे फिर गिरे अलग हो व्रंतों से, वे निरीह मर्माहत होकर कुसुमा करके कुंतों से। नव पल्लव का सृजन तुच्छ है किया बात से वध जब क्रूर, कौन फूल सा हंसता देखे वे अतीत से भी जब दूर। लिखा हुआ उनकी नस नस में इस निर्दयता का इतिहास, तू अब आह बनी घूमेगी उनके अवशेषों के पास। बिम्बिसार उठकर अपने आप से, संध्या का समीर ऐसा चल रहा है जैसे दिन भर का तपा हुआ उद्विग्न संसार एक शीतल निश्वास छोड़कर अपना प्राण धारण कर रहा हो। प्रकृति की शांतिमयी मूर्ति निश्चल होकर भी मधुर झोंकों से हिल जाती है। मनुष्य हृदय भी रहस्य है, एक पहेली है जिस पर क्रोध से भैरव हुंकार करता है, उसी पर स्नेह का अभिषेक करने के लिए प्रस्तुत रहता है। उन्माद और क्या मनुष्य पागल विश्व के शासन से अलग होकर कभी निश्चेष्टा ग्रहण नहीं कर सकता। हाय रे मानव, क्यों इतनी दुराभिलाषाएं बिजली की तरह तू अपने हृदय में आलोकित करता है। क्या निर्मल ज्योति तारांगण की मधुर किरणों के सदृश सदृतियों का विकास तुझे नहीं रुचता। भयानक भावुकता और उद्वेगजनक अंतःकरण लेकर तू क्यों व्यग्र हो रहा है। जीवन की शांतिमय सच्ची परिस्थिति को छोड़कर तू कब तक पड़ा रहेगा।
यदि मैं सम्राट न होकर किसी विनम्र लता के कोमल किसलियों के झुरमुट में एक अधखिला फूल होता और संसार की दृष्टि मुझ पर न पड़ती, पवन की किसी लहर को सुरभित करके धीरे से उस थाले में चू पड़ता, तो इतना भीषण चित्कार इस विश्व में न मचता। उस अस्तित्व को अनस्तित्व के साथ मिलाकर कितना सुखी होता। भगवन, असंख्य ठोकरें खाकर लुढ़कते हुए जड़ ग्रह पिंडों से भी तो इस चेतन मानव की बुरी गति है। धक्के पर धक्के खाकर भी ये निर्लज सभा से नहीं निकलना चाहता, कैसी विचित्रता है। वासवी भी नहीं है, कब तक आवेगी। जीवक प्रवेश करते हुए, सम्राट। बिंबिसार, चुप। यदि मेरा नाम जानते हो तो मनुष्य कहकर पुकारो, यह भयानक संबोधन मुझे नहीं चाहिए। जीवक, कई रथ द्वार पर आए हैं और राजकुमार कुड़ीक भी आ रहे हैं। बिंबिसार, कुड़ीक कौन? मेरा पुत्र या मगध का सम्राट अजातशत्रु। अजातशत्रु प्रवेश करते हुए, पिता, आपका यह पुत्र कुणीक सेवा में प्रस्तुत है, पैर पकड़ता है। बिंबिसार, नहीं नहीं, मगधराज अजातशत्रु को सिंहासन की मर्यादा नहीं भंग करनी चाहिए। मेरे दुर्बल चरण, छोड़ दो इन्हें। अजातशत्रु, नहीं पिता, पुत्र का यही सिंहासन है। आपने सोने का झूठा सिंहासन देकर मुझे सत्य के अधिकार से वंचित किया, अबाध्य पुत्र को भी कौन क्षमा कर सकता है। बिंबिसार, पिता, किंतु वो पुत्र को क्षमा करता है, सम्राट को क्षमा करने का अधिकार पिता को कहा। अजातशत्रु, नहीं पिता, मुझे भ्रम हो गया था, मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली थी, मिला था केवल जंगलीपन की स्वतंत्रता का अभिमान, अपने को विश्व भर से स्वतंत्र जीव समझने का झूठा आत्मसम्मान। बिंबिसार, वो भी तो तुम्हारे गुरुजन की ही दी हुई शिक्षा थी, तुम्हारी मां थी राजमाता। अजातशत्रु, वो केवल मेरी मां थी, एक संपूर्ण अंग का आधा भाग, उसमें पिता की छाया न थी पिता, इसीलिए आधी शिक्षा अपूर्ण ही होगी। छलना प्रवेश करते हुए चरण पकड़ लेती है, नाथ, मुझे निश्चय हुआ कि वो मेरी उद्दंडता थी, वो मेरी कूट चातुरी थी, दम्भ का प्रकोप था, नारी जीवन के स्वर्ण से मैं वंचित कर दी गई, ईंट पत्थर के महल रूपी बंदी गृह में अपने को धन्य समझने लगी थी। दंडनायक, मेरे शासक, क्यों ना उसी समय शील और विनय के नियम भंग करने के अपराध में मुझे आपने दंड दिया, क्षमा करके सहन करके जो आपने इस परिणाम की यंत्रणा के गर्त में मुझे डाल दिया है वो मैं भोग लूंगी, अब उबारिए। बिंबिसार, छलना, दंड देना मेरी सामर्थ्य के बाहर था, अब देखूं कि क्षमा करना भी मेरी सामर्थ्य में है या नहीं। वासवी प्रवेश करते हुए, आर्य पुत्र, अब मैंने इसको दंड दे दिया है। ये मातृत्व पद से च्युत की गई है। अब इसको आपके पौत्र की धात्री का पद मिला है। एक राजमाता को इतना बड़ा दंड कम नहीं है। अब आपको क्षमा करना ही होगा। बिंबिसार, वासवी तुम मानवी हो कि देवी? वासवी, बता दूं, मैं मगध के सम्राट की राजमहिषी हूं और ये छलना मगध के राजपौत्र की धाई है और ये कुणीक मेरा बच्चा इस मगध का युवराज है और आपको भी। बिंबिसार, मैं अच्छी तरह अपने को जानता हूं वासवी। वासवी, क्या? बिंबिसार, कि मैं मनुष्य हूं और इन मायाविनी स्त्रियों के हाथ का खिलौना हूं। वासवी, तब तो महाराज मैं जैसा कहती हूं वैसा ही कीजिए, नहीं तो आपको लेकर मैं नहीं खेलूंगी। बिंबिसार, तो तुम्हारी विजय हुई वासवी, क्यों अजात पुत्र होने पर पिता के स्नेह का गौरव तुम्हें विदित हुआ? कैसी उल्टी बात है। कुणीक लज्जित होकर सर झुका लेता है। पद्मावती प्रवेश करते हुए, पिताजी मुझे बहुत दिनों से आपने कुछ नहीं दिया है, पौत्र होने के उपलक्ष्य में तो मुझे कुछ अभी दीजिए, नहीं तो मैं उपद्रव मचाकर इस कुटी को खोद डालूंगी। बिंबिसार, बेटी पद्मा तू भी आ गई। पद्मावती, हां पिताजी बहू भी आ गई है, क्या मैं यहीं ले आऊं? वासवी, चल पगली, मेरे सोने सी बहू इस तरह क्या यहां तहां जाएगी, जिसे देखना हो वहीं चले। बिंबिसार, तुम सबने तो आकर मुझे आश्चर्य में डाल दिया, प्रसन्नता से मेरा जी घबरा उठा है। पद्मावती, तो फिर मुझे पुरस्कार दीजिए। बिंबिसार, क्या लोगी? पद्मावती, पहले छोटी मां को, भया को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इनकी याचना पहले की है। फिर बिंबिसार, अच्छा री पद्मा, देखूंगा तेरी दुष्टता। उठो वत्स अजात, जो पिता है वो क्या कभी भी पुत्र को क्षमा, केवल क्षमा मांगने पर भी नहीं देगा? तुम्हारे लिए कोश सदैव खुला है, उठो छलना, तुम भी उठो। अजात शत्रु को गले लगाता है। पद्मावती, तब मेरी बारी। बिंबिसार, हां कह भी दे। पद्मावती, बस चलकर मगध के नवीन राजकुमार को एक स्नेह चुम्बन आशीर्वाद के साथ दीजिए। बिंबिसार, तो फिर शीघ्र चलो। उठकर गिर पड़ता है। ओह, इतना सुख एक साथ मैं सहन न कर सकूंगा, तुम सब बहुत विलंब करके आए। कांपने लगता है। गौतम का प्रवेश होता है और गौतम अभय का हाथ उठाते हैं। आलोक के साथ यवनिका पतन।